मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 18 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल दीपावली है और दीपावली के बाद भी कुछ दिनों तक त्योहारों का सिलसिला चलता ही रहता है। गोवर्धन पूजा के रूप में, भाई दूज के रूप में, छठ के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी स्वीकार करें और आइए हम सब मिलकर इस दीपावली को हिंदुस्तान के जन जन की दीपों की अवली में परिवर्तित करने के प्रयास में जुट जाएं। और मित्रों, ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे हम हर घर की देहरी पर एक जलता हुआ दीपक रख सकते हैं, इसी को लेकर आज मैंने लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें सोच रखी हैं। और इनफैक्ट मैंने तो जो सोचा है उसका संबंध सीधे सीधे प्रदूषण से है। तो आइए अब हम थोड़ी सी इसी पर बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि खासकर दिल्ली और एनसीआर एरिया में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि पटाखों के फोड़ने पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है और इसको लेकर के थोड़ी सी राष्ट्रीय बहस सी भी छिड़ गई है। कुछ इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इससे आर्थिक नुकसान बता रहे हैं, कुछ टेक्निकल मामले में भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पटाखों से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण तो गाड़ियों से होता है। तो इस तरह की अनेक बातें हो रही हैं। फ्रेंड्स, उन बातों को होने दीजिए, इस तरह की बातें हमेशा होंगी ही होंगी, इन्हें रोका नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं कि ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक भी है कि कम से कम उसके जो अलग अलग डायमेंशन हैं वो हमारे सामने आते हैं और हम उसे बड़े खुले रूप में फिर देखने की स्थिति में होते हैं कि रियल में हमारी समस्या है कहां। आइए हम थोड़े इसके अलग ही कोण पर बात करते हैं और वो कोण ये है फ्रेंड्स कि एक नागरिक के रूप में, स्पेशली एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में या एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका है। चलिए हम धर्म को हटाते हैं, हम परंपरा को हटाते हैं, ठीक है, हम विज्ञान को भी थोड़ा सा किनारे कर देते हैं कि इससे होता है या नहीं होता है, हम व्यापार को भी हटाते हैं कि इससे कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इन सब बातों को चलिए हम सब परे करके और आइए एक नागरिक के तौर पर इस पर विचार करें, क्योंकि वही वह चीज है जिस पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है और हम उसे लागू भी कर सकते हैं। बाकी को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी बड़ी एजेंसियों पर है, अथॉरिटीज पर है, वो अपने ढंग से करने की कोशिश करेंगे, वो उनके ऊपर है। दोस्तों, आप खुद सोचकर देखिए कि लगातार ये खबरें आती चली जा रही हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे पर्यावरण पर, पूरे के पूरे दुनिया के पर्यावरण पर, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व जलवायु कितनी बुरी तरह से दुष्प्रभावित हो रही है। इतने सम्मेलन हो रहे हैं, इतनी बातचीत हो रही है, तो चलिए वो सारी चीजें अलग होंगी, लेकिन हम नागरिक के बतौर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है और हमें ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि उसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, क्या उस दुष्प्रभाव को कोई सरकार नामक व्यक्ति है जो झेल रहा है, या कोई राष्ट्र नामक कोई व्यक्ति है जो अकेले उसको झेलेगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, हम ही से बना हुआ है। हम ही जब झेलेंगे तो ये होगा कि वह देश झेल रहा है, हम ही जब झेलेंगे तो ये होगा कि ये सरकार नहीं कर रही है या सरकार की असफलता है। यानी कि जो कुछ भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि पटाखों से हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, उससे प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनफैक्ट किसके लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें इस नजरिए से भी इन सब सारे मामलों पर संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए मित्रों। और जनरली हम नहीं सोचते हैं, हमारे चेतना में क्या बना हुआ है कि ठीक है, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, मैं ही नहीं फोड़ूंगा तो कौन सा प्रदूषण कम हो जाएगा, वहीं अगर अपने गणेश जी या दुर्गा जी या अपनी पूजा की सामग्री को अगर झील में नहीं डालूंगा, तालाब में नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा? बाकी तो सारे के सारे लोग डाल ही रहे हैं, मेरे एक के करने से क्या होगा? और सच बताऊं कि कम से कम हम सबकी मानसिकता तो लगभग लगभग इसी तरह की हो गई है, एक के करने से क्या होगा। मित्रों, एक के करने से ठीक है, तार्किक रूप से लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक के करने से ही सब कुछ होगा। मैं दूसरों के को अगर अपना उदाहरण बनाना चाहता हूं तो सच पूछे तो इसी समाज में दूसरे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, भले ही उसे हम देख न पा रहे हों, याद न कर पा रहे हों, जो बिना किसी और की चिंता किए हुए अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, घर बार छोड़ करके अपना काम धंधा छोड़ करके कोई पता लग रहा है कि बंबई के समुद्र तटों की सफाई में लगा हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर के किसी झील की सफाई में लगा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा करने से उसे सुख मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है। सोच करके देखिए, ऐसे लोग भी तो हैं, तो हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श क्यों नहीं बनाते? कचरा फैलाने वालों के तर्क का सहारा लेकर के तो हम अपने लिए भी एक अधिकार ढूंढ लेते हैं कि हम भी फैला रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैलाए हुए को समेट रहे हैं, दूसरों के फैलाए हुए को समेट रहे हैं, मित्रों क्या वो हमारे आदर्श नहीं है? सच पूछे तो वही हमारे आदर्श है, सच्चे आदर्श तो वही है। और एक जो बहुत बड़ी बात है, सच पूछे तो जब आप वेस्ट कंट्रीज में जाइए, डेवलप्ड कंट्री में जाइए, तो आप देखेंगे कि प्रदूषण की समस्या वहां भी है, लेकिन दूसरे तरह की समस्याएं हैं, वहां गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उद्योग बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसने समस्या खड़ी कर दी है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी परंपराओं से आई है, जो हमारी धार्मिक मान्यताओं से आई हुई है, और सच पूछे तो जो हमारी जीवन शैली से भी अनावश्यक रूप से आ गई है। जैसे स्वच्छता, कचरा फैलाने की समस्या को आप देख लीजिए, इतने कहने के बावजूद, करने के बावजूद, इस अभियान को लगभग लगभग 2-3 साल होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई हो। जगह जगह आपको कचरा फैला हुआ मिलेगा, और मजेदार बात यह है कि सरकारी संस्थानों के बाहर तक आपको बकायदे कचरा दिखाई दे सकता है। कल मैं स्टेट बैंक के ऑफिस में गया था, अच्छा खासा बड़ा स्टेट बैंक था, और दिन के करीब 11:30 बज चुके थे, और बाहर देखने के बाद साफ लग रहा था कि यहां कम से कम 4-5 दिन से तो झाड़ू नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 11:30 बजे तक तो उतना कचरा इकट्ठा नहीं हो सकता था, और कचरों के ऊपर भी धूल इकट्ठी थी, और शहर के बीचों बीच और सबसे महत्वपूर्ण मार्केट में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें विचार करना होगा। भारतीय परंपरा को हम इस रूप में तो पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे रूप में आप देखिए कि हमारे जो देवी देवता हैं, उनके कभी आप स्वरूप को देखिए, जो भारतीय मेधा ने जो स्वरूप गढ़ा है, उसमें आपको प्रकृति के तत्व दिखाई देंगे, प्रकृति के तत्व, उसमें उद्योग से बने हुए सामान नहीं दिखाई देंगे। किसी के हाथ में कमल का फूल है, किसी के हाथ में शंख है, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हैं। नदी हमारी माता है, हिमालय को हम पूजते हैं, नगाधिराज मानते हुए हिमालय की हम पूजा करते हैं। बहुत से लोक जीवन में तो ऐसी भी परंपराएं हैं कि बकायदे जब किसी महिला के बच्चा होता है तो वो कुएं का पूजन करने बकायदे जाती है, कुएं का पूजन करने जाती है, तो जलाशय ही तो है। आंवला की पूजा होती है, हम पीपल को पूजते हैं, तुलसी को देवी मानते हुए अपने आंगन में स्थान देते हैं, उनके नीचे दीपक जलाते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, करवा चौथ में चंद्रमा को देखने के बाद हम भोजन करते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि बाप रे, हमारे लिए तो इनफैक्ट अगर कोई देवता है तो वो प्रकृति ही है, मूर्ति के रूप में हमने उसका मानवीकरण कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण करने से फिर हमें एक आलंबन मिल जाता है, हमें एक आधार मिल जाता है, हमारे मन को एक सहारा मिल जाता है, और फिर हमें उनकी आराधना करने में आसानी हो जाती है। मानवीकरण यही इसीलिए किया गया है, अदरवाइज मूलतः आप गहराई में जाकर देखेंगे तो वह आपको एक तरीके से प्रकृति की ही पूजा मिलेगी। और फिर परंपराओं के विधान को देखिए, पूजा करने से पहले आपको स्नान करना होगा, आपको स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे, मंदिर की धुलाई करनी होगी, यहां तक कि अगर प्रसाद जमीन पर गिर गया है तो उसे अब आप नहीं चढ़ाएंगे, वो अशुद्ध हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, बट नहीं चलो इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं वो आ गए होंगे, धूल में तो हजार बैक्टीरिया फैले रहते हैं। आप अब देखिए ये क्या है, ये हमारी परंपरा को ही ले लीजिए तो सफाई की कितनी बड़ी बात यहां की जा रही है, कितनी जबरदस्त बात की जा रही है। तो मित्रों, अगर हम सच में इस तरह की परंपराओं में पले बढ़े हैं, ऐसी ही आराधनाएं कर रहे हैं, ऐसी ही उपासनाएं कर रहे हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि व्यावहारिक जीवन में हम इसे लागू क्यों नहीं कर पाते, हमारे साथ क्या दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को अगर स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला कोई देश होना चाहिए था तो वो भारत को होना चाहिए था, क्योंकि आप पुराने ग्रंथों में उठा करके देखिए, आप देखिए कि स्वच्छता के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई है। आप मित्रों और कुछ नहीं, आप मनुस्मृति उठा लीजिए, मनुस्मृति जो आप कह लीजिए कि भारतीय जीवन पद्धति का पहला विधान है, पहला संविधान है आप कह सकते हैं, है ना, उसमें उन्होंने दंड विधान लिखा है कि किस किस तरह के अपराधों की किस किस तरह की सजाएं होंगी, और उसमें उन्होंने व्यवस्था की हुई है कि जो जलाशयों को प्रदूषित करेगा उसे मृत्यु दंड तक का विधान है, जलाशयों को प्रदूषित करने का। कल्पना करके देखिए कि उस युग से हमारे लिए जलाशय कितने मायने रखते हैं। हमने एक शब्द गढ़ा है तीर्थ यात्रा। मित्रों आप डिक्शनरी उठा करके देखिए, तीर्थ का मतलब होता है जल, जल की यात्रा। और आप देखिए कि प्राचीनतम हमारे जो तीर्थ स्थान बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं जल स्थलों पर बने हुए हैं, जल के किनारे बने हुए हैं, और वो आवश्यकता भी थी। गंगा हमारी मां है। तो मित्रों हम जलाशयों को इतना महत्व दे रहे हैं, पानी की शुद्धता को इतना महत्व दे रहे हैं, मतलब मृत्यु के बाद आप सोच करके देखिए हम मुख में मृतक के गंगा जल डालते हैं और ये मान करके चलते हैं कि अगर यह पवित्र गंगा जल उसके अंदर चला गया तो अब इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष जैसी सबसे बड़ी उपलब्धि इसे मिल जाएगी, केवल गंगा की दो बूंद जल से, जल की हम इस महानता को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसी जल को गंदा करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। आप सोच करके देखिए, आप जब सोचेंगे फ्रेंड्स तो इस तरह के बहुत से विरोधाभास दिखाई देंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देंगे। चलिए हम अपनी परंपराओं को ही ले लें, हम अपने धर्म को ही ले लें, अपने बड़े बुजुर्गों की कहावतों को ले लें, तो सब जगह आपको अद्भुत तरीके से वैज्ञानिक आपको चेतना दिखाई देगी, पद्धति दिखाई देगी, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने जीवन में उन चीजों को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी अपने प्रिय मित्रों से, श्रोताओं से अपील करूंगा कि हम दिवाली के दिन कम से कम यही संकल्प लें कि हम पवित्रता को, स्वच्छता को, सफाई को अपने जीवन का एक अभियान बनाएंगे। हम गंदगी न तो फैलाएंगे और न ही दूसरे को फैलाने देंगे, विनम्रता से उन्हें कहेंगे कि भैया जरा इसे ठीक करो। और खास कर चुकी कल दिवाली है, दिवाली पर तो आप दो तीन दिन पहले से पटाखे शुरू हो जाते हैं और आगे भी कई दिनों तक चलते रहते हैं, तो उसमें तो हम कर ही सकते हैं कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि बेटे पटाखे मत चलाओ, उनको नुकसान से अवगत कराएंगे, और यदि वो नहीं ही मानेंगे तो कहेंगे कि फिर थोड़े से चला लो। चलिए अगर मात्रा ही हम कम करने में सफल हो गए तो कम से कम सफलता की दिशा में एक कदम तो आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों इसी संदेश के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको दीपावली की पूर्व शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों एक जरूरी सूचना भी, और सूचना यह कि कल दीपावली है, कल तो ऑलरेडी छुट्टी है, परसों भी हमने जानबूझकर छुट्टी रखी है क्योंकि उस दिन विजिटर्स बहुत कम हो जाते हैं, सब अपने अपने रात में त्योहार मनाते हैं, तो उस दिन भी हमने छुट्टी रखी हुई है। इसके बाद फिर शनिवार और इतवार की छुट्टी होती ही है, सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा, और वह यह फ्रेंड्स कि आपको मालूम है कि अभी जो रविवार आ रहा है यानी कि 22 अभी अक्टूबर से ही हमारी 15 दिन की क्लासेज शुरू होने वाली हैं, जिसमें पूरे देश से स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी करने वाले आते हैं, मेरी पूरी तरह से व्यस्तता उनके साथ हो जाती है, लेकिन मित्रों आपको डेली लाइफ मैनेजमेंट पहले की तरह ही सुनने को मिलेगा। यहां मैं केवल एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि वो प्री रिकॉर्डेड है, आपको नहीं लगेगा कि ये पहले से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड लाइफ मैनेजमेंट है, विषय बहुत अच्छे उठाए गए हैं। बस एक ही फर्क मिलेगा कि अगर आपको कोई नवीनतम घटना मिलेगी तो जो मैं अक्सर कर लेता हूं कि उसको लेकर के फिर उस पर चर्चा करता हूं, उसका वहां आपको जरूर अभाव मिलेगा, अदरवाइज आप उसे उतना ही रसयुक्त पाएंगे और उतना ही उपयोगी भी। तो मित्रों, क्लासेस खत्म होने के बाद फिर सीधे सीधे रोजाना नए रूप में मुलाकात होगी, तो एक लंबी अवधि के लिए आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ इस लंबी अवधि की भी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नमस्कार।